पृष्ठ संख्या 33, महाकाव्योचित औदात्य। राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में दो भिन्न कालों, मानसिकताओं और प्रकृतियों की रचनाएं हैं। राम की शक्ति पूजा जब लिखी गई थी, तब तक कविता के पुराने मूल्यों, जिनका संबंध अपनी संस्कृति से भी था, पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया था। यद्यपि उन्हें नए रूप में पहचानने की ललक ने जन्म ले लिया था, अंधेरे में इसके विपरीत तब लिखी गई, जब पुराने काव्य मूल्यों को नकारना आधुनिकतावादी फैशन बन चुका था और स्वयं मुक्तिबोध इस तथा पृष्ठ संख्या 34 कथित आंदोलन में शामिल थे। नई कविता के उत्कर्ष के इस दौर में अज्ञेय जैसे विचारकों को करवटें बदलनी पड़ीं। पुरातन की एकदम अस्वीकृति अंततः उनके गले नहीं उतर सकी। नामवर ने भी जो नयापन देने की पेशकश की, वह पुरातन के ही सहारे। फिर अपने नएपन को ही उन्होंने आत्मनिषेध संदर्भ कविता के नए प्रतिमान के द्वारा अप्रासंगिक करार दे दिया। यह चर्चा अंधेरे के संदर्भ में इसलिए जरूरी लगी कि नए प्रतिमानों के प्रवक्ता, जिनमें से एक मुक्तिबोध भी थे, उन्होंने सुविधाजनक मध्य मार्ग चुना। ठीक रहा तो इधर, नहीं तो उधर। इस गैर जिम्मेदाराना तेवर का बेमिसाल उदाहरण है अंधेरे में कविता, जिसमें कवि काव्य नायक को अपना कवच बनाता है, किंतु बीच बीच में और अंत तक हस्ताक्षेप करता रहता है, अपनी कमजोरियां भी बताता है और अपना निर्वीर्य संकल्प भी। उसके प्रशंसक उसे रसवादी पारंपरिक काव्य चिंतन की कसौटी के लिए चुनौती मानते आए हैं और वह कवि के ही दिए गए हॉरर को इस कविता के परिचायक शब्द के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। हॉरर दूसरी भाषा का शब्द है, इसलिए वह हमें हॉरिफाई करता है, अन्यथा पिछले 3-4 दशकों में हम आतंक शब्द की अर्थ व्यंजनाओं से लगातार दो चार होते रहे हैं। खैर, हमें यह मानने में फिर भी कोई आपत्ति नहीं है कि अंधेरे में हॉरर की कविता है और वह स्थापित रसवाद के बाहर की चीज़ है। मैंने तो एक बड़े साहित्यिक आयोजन में कहा भी था कि यदि अंधेरे में को पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्यों ना एक और रस, आतंक रस, जोड़ लिया जाए। क्योंकि रसवाद की शर्त यही है कि किसी कविता को पढ़ने से यदि आनंद का अनुभव होता है, तो उसमें रस का तत्व है। प्रसंगतः यह भी उल्लेखनीय है कि सहानुभूति के नाते भी यदि आप किन्हीं रचनाओं के पाठ में मग्न होते हैं, तो वहाँ भी रमने की वृत्ति होती है। यह ढोंग साहित्य में नहीं चल सकता कि आप रचना के आनंद भी प्राप्त करते रहें और साथ ही यह भी फरमा रहे हैं कि रचना में आनंद का तत्व है ही नहीं। यदि वह नहीं है, तो फिर पढ़ने का कष्ट क्यों? तब तो पाठक को अपना समय दूसरे उपयोगी कार्यों में गुजारना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसी नाते यह बहस उठाई गई। राम की शक्ति पूजा में महाकाव्योचित औदात्य है और यह रचना रसवादी प्रतिमानों पर खरी उतरने के बाद उसके कटघरे से बाहर रहती है, इसलिए इसे प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य की शास्त्रीय श्रेणी में न रखकर एक अलग श्रेणी दी गई, बल्कि इसी रचना के चलते लंबी कविता के नाम से एक नए काव्य संवर्ग की पहचान बनी, जिसकी समीक्षा की एक लंबी परंपरा अब तक बन चुकी है। महाकाव्योचित औदात्त की अवधारणा सबसे पहले राम की शक्ति पूजा को ही लेकर उठी, उसी के साथ सरोज स्मृति और तुलसीदास पर भी इसी संदर्भ में विचार किया जाने लगा। महाकाव्योचित औदात्त को लंजाइनस के उदात्त काव्य के तत्व दूर तक ले जाना समीचीन नहीं होगा और ना ही डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा उदात्तता के आधार पर किसी महाकाव्य की समीक्षा के गिने गिनाए मानदंडों का अनुसरण अपेक्षित है। महाकाव्योचित औदात्त का सीधा सा अर्थ है महाकाव्य का महाप्राण तत्व। यदि वह किसी आख्यानक कविता में विद्यमान है, तो हम उसे महाकाव्योचित औदात्त से संपन्न कृति कह सकते हैं। भारतीय काव्य चिंतन की धुरी रस रहा है, महाकाव्य के संदर्भ में भी वही प्रामाणिक आधार है। दूसरी वरीयता नायक से संबंधित है। कथावस्तु को अलग से महत्व देना इसलिए निरर्थक है कि वह नायक से जुड़ी हुई होती है। नाट्य विवेचन में भी अपने यहाँ वस्तुनेता और रस पर ही विचार मुख्यतः करने की मान्यता रही है। महाकाव्य में जीवन का विषय दिया पृष्ठ संख्या 35 पूर्ण चित्र उपेक्षित होता है, अतः उसमें आख्यान और जीवन से संबंधित दृश्य वैविध्य का सन्निवेश अनिवार्यता की सीमा तक उपयोगी माना जाता है। अतः मोटे तौर पर किसी लंबी कविता की महाप्राणता पर विचार के तीन बिंदु हो सकते हैं, नायक और कथानक, रस विधान एवं दृश्य विधान। राम की शक्ति पूजा के नायक राम शास्त्र अनुमोदित गुणों से सर्वश्रेष्ठ संपन्न धीरो दत्त नायक की श्रेणी में आते हैं। उनका चरित्र लोक विस्तृत तथा लोक आधारित है। उनमें संबंधित कथा भी पुराणों तथा लोक काव्यों द्वारा मान्य है। शक्ति पूजा का प्रसंग यद्यपि सर्वज्ञ नहीं मिलता, किंतु देवी भागवत शिव महिमनसोत कत्तिवास रामायण आदि उसकी पारंपरिक प्रतिष्ठा के संदर्भ में यथेष्ट प्रमाण माने जा सकते हैं। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा की कथा वस्तु आख्यान है और उसका नायक राजवंशी एवं धीरोदत्त नायकों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में सर्वोपरि ठहरता है। रस दृष्टि से भारतीय काव्य चिंतन की मान्यता है कि श्रृंगार वीर और शांत में से किसी एक रस को अंगीय प्रधान होना चाहिए और अन्य रसों को उसके समुपकारक के रूप में रचना में अपनी विद्यमान दर्ज करानी चाहिए। राम की शक्ति पूजा का मुख्य अंगी रस वीर है, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है। किंतु उत्साह नामक मनोभाव ना तो नायक में है और ना ही उसके सेना नायकों सैनिकों में आरंभ से अंत तक अविचलित रूप में बना रहता है। इस मनोभाव की रेखा सरल ना होकर तिर्यक है, आरोह अवरोह पूर्ण है और कविता की रोचकता बनाए रखने के लिए शायद यह एक बड़ी आवश्यकता भी थी। नाटकीयता पर विचार करते समय इस पर कुछ अधिक बात की जा सकेगी। पहले दिन के युद्ध में राम अपनी संपूर्ण मानवीय एवं दैवीय क्षमता के उपयोग के बावजूद अपने को असहाय पाते हैं। सीता की छवि का स्मरण उन्हें क्षण भर के लिए उत्साहित अवश्य करता है, पर उसके तत्काल बाद शक्ति की लीला के स्मरण करते ही वह पहले से अधिक अवसन्न हो जाते हैं। हनुमान का शक्ति संहार के लिए ऊर्ध्वगमन अथवा विभीषण का उनकी हितैषणा के अंतर्निहित आशय के साथ उनको धिक्कारना भी उन्हें उनकी हताशा से उबार नहीं पाते। जम्बवान की सलाह उनकी समझ में आती है और वह हनुमान को शक्ति पूजा के लिए अपेक्षित नीलकमल लाने का आदेश देकर ध्यानमग्न हो जाते हैं। अब उनका मन शांत है, विजय उत्साह का दूर तक पता नहीं। फिर एक झटका तब लगता है जब शक्ति राम की परीक्षा के निमित्त अनुष्ठान में अर्पित किया जाने वाला अंतिम कमल चुरा लेती है। राम जब अपना दाहिना नेत्र नील कमल के स्थान पर अर्पित करने के लिए कृत संकल्प हो उठते हैं तो असन्नता टूटती है और पाठक राम की सर्वशक्तिमत्ता के प्रति पुनः आश्वस्त हो उठते हैं तथा स्वयं शक्ति अपने लोक विस्तृत रूप में प्रकट होकर उन्हें विजय आशीष देती है और उनके वदन में लीन हो जाती है। अंततः राम के आत्मविश्वासी और संकल्पशील मन का अविजित प्रमाणित होना ही इस कृति का अंतिम तथ्य है। वीर रस को अंगी या मुख्य रस मानने के पीछे यही औचित्य है। श्रृंगार वीर रस का प्रमुख सहकारी आरंभ से ही हो रहा है। राम की शक्ति पूजा में इसकी चरितार्थता अपनी व्यंजकता में संभवतः अप्रतिम रूप से हुई है। राम के कतार मन को पुष्प वाटिका में दिखी सीता की छवि का स्मरण होता है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्फलक याद आया उपवन। पृष्ठ संख्या 36 विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का नव पलकों पर प्रथमो थान पतन ज्ञात छवि प्रथम शुविया जानकी नयन नमनीय प्रथम कंपन तुरिया। तत्कालिक प्रतिक्रिया सचमुच अप्रतिम है। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त फूटी स्मत सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। श्रृंगार वस्तुतः इसी अर्थ में वीर रस का सहकारी कहा गया है। चारण काल या रीति काल के इस प्रकार के वीर श्रृंगार के सहयोगी चित्रणों की प्रकृति सामंती है। जबकि राम की शक्ति पूजा में मानवीय प्रकृति की सहज भूमिका है। अन्य रस भी सहकारी रूप में राम की शक्ति पूजा में विद्यमान है और वह रचना की शक्ति का समूह प्रवर्धन करते हैं। रौद्र और भयानक रस हनुमान के आकस्मिक मनोद्वेग पूरे वेग के साथ उनका अंतरिक्ष गमन शिव के द्वारा संकट का अनुभव करने के अनंतर शक्ति को प्रबोधन ऐसे ही स्थल हैं। शक्ति का हनुमान की माँ अंजना के रूप में उदित होकर उन्हें प्रबोधित करना वात्सल्य प्रकरण है। भक्ति रस का मूर्तिमान रूप हनुमान में भी देखा जा सकता है। शांत रस राम के आत्म अधिकार में है। शांत रस राम के आत्माधिकार में है। विभत्स को छोड़कर अन्य रस भी भाव स्तर पर विद्यमान है। विभत्स को रस श्रेणी में स्वीकार करने के पक्ष में मैं यों भी नहीं हूँ, और यदि उसे रस की श्रेणी में स्थान दिया जाता है और रसों की संख्या में पहले की गई बढ़ोतरी वात्सल्य भक्ति स्वीकार की जाती है, तो मुक्तिबोध के हारर को भी एक अतिरिक्त रस आतंक रस के रूप में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर यह आपत्ति है। अतः विभत्स का ना होना राम की शक्ति पूजा का गुण ही कहा जाएगा। शोक रसात्मक हो सकता है, किंतु जुगुप्सा तो सदैव घृणा ही रहेगी। वह कभी रसास्पद नहीं हो सकती। मुझे आश्चर्य है कि विभत्स का निषेध पहले के आचार्यों ने कविता के संदर्भ में क्यों नहीं किया। दृश्य वैविध्य की दृष्टि से भी राम की शक्ति पूजा अपने आकार प्रकार की सीमाओं के भीतर एक सार्थक रचना है। आरंभ संध्या से होता है, रवि हुआ अस्त, फिर अमावस्या की रात्रि का घोर अंधकार, घने अंधकार में बिजली की कौन उपमान रूप में ही सही, फिर हनुमान के उद्योग के संदर्भ में पवन पुत्र अंतरिक्ष आदि का व्यंजक संदर्भ, आरंभ में युद्ध का समस्त रेखा चित्र, आरंभ में युद्ध का सशक्त रेखा चित्र, पर्वतीय शिविर का संकेत चित्र, युद्ध से संबंधित मंत्रणा का गोपनीयतापूर्ण प्रवेश, मशाल के आलोक में युद्ध मंत्रणा की सभा, राम का शक्ति की आराधना के संदर्भ में हठ योग परक अनुष्ठान, दिव्य शक्ति का उदय आदि दृश्य इस रचना का फलक बड़ा बना देते हैं। वर्णना शक्ति का परिचय देना ही हो तो प्रातः काल का यह व्यंजक संक्षिप्त चित्र उद्धरणीय हो सकता है। निश हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। पृष्ठ संख्या 37 पुष्प वाटिका के स्मृति परक प्रकरण में प्रातः काल का चित्र और भी व्यंजक है। प्रस्तुत उद्धरण इसलिए कि यह बाहरी और भीतरी प्रकाशोदय की युगपत व्यंजना करता है। निराला कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की क्षमता रखते थे और संभवतः वह उसी को कवि की मूल प्रतिभा की कसौटी भी मानते थे। राम की शक्ति पूजा इसलिए लंबी कविताओं का आरंभ बिंदु होने के साथ साथ आगे की इस श्रेणी में आने वाली कविताओं के लिए एक चुनौती या कि मील का पत्थर भी बन गई है। अंधेरे में दूसरे ढंग की कविता है, उसकी समीक्षा राम की शक्ति पूजा की समीक्षा के प्रतिमानों के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। वह राम की शक्ति पूजा के बाद लिखी गई हिंदी की मान्य लंबी कविताओं में निश्चय ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, किंतु उसका चरित्र राम की शक्ति पूजा से एकदम भिन्न है। उसके संदर्भ में महाकाव्योचित औदात्य का प्रश्न ही नहीं उठता। वह मूलतः अस्मिता की खोज की कविता है, विशेष रूप से मध्यवर्गीय आम आदमी की अस्मिता की खोज की कविता। नायकत्व यहाँ भी खंडित नहीं होता। उस पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब पाठक के सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि वह कवि को नायक माने या कि कवि द्वारा माध्यम के रूप में प्रयुक्त किए गए किसी काल्पनिक काव्य नायक को मुख्य पात्र माने। यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब कवि अपनी दुर्बलताओं का बखान सही दाना अंदाज में करने लगता है। कवि की यह मनोवृत्ति रचना को न केवल कमजोर करती है बल्कि उसके संपूर्ण कथ्य को भी कटघरे में खड़ा कर देती है। रस के संदर्भ में यह चर्चा हो चुकी है कि हारर भावात्मक अनुभव की कोटि से बाहर की कोई वस्तु मानी जाती है। अतः अंधेरे में कविता रस दृष्टि से अविचार्य है। वस्तु वैविध्य भी उसमें कम है क्योंकि पूरा वातावरण अंधकार का है, जिसमें मशाले हैं, जुलूस है, मारक शस्त्र अस्त्र है, गुफाएं हैं, सीढ़ियों वाले घर हैं, वही सब जो मुक्तिबोध की प्रायः प्रत्येक कविता में होता है, तो फिर इस कविता की चर्चा क्यों होती है और इसे आधुनिक युग की लंबी कविताओं के शीर्ष वर्ग में क्यों स्थान दिया जाता है। वस्तुतः यह कविता मध्यवर्गीय आम आदमी की अस्मिता की कविता है, जो सामाजिक राजनीतिक विद्रूपताओं के विरुद्ध क्रांति करने की आकांक्षा तो रखता है, किंतु जो यह भी समझता है कि उसमें ऐसी जड़ीभूत दुर्बलताएं हैं जिसके कारण न केवल वह इस क्रांति का नेतृत्व नहीं कर सकता, वरन उसमें भागीदार होने का भी साहस नहीं कर सकता। अंधेरे में का काव्य नायक वस्तुतः रचनाकार का एक आवरण है, जो अक्सर विदीर्ण कर दिया जाता है और कभी स्वयं मंच पर प्रकट हो जाता है। इसे हम एक आलापी लंबी कविता कह सकते हैं, जिसमें कवि आत्म अनुभव का ही बयान करना चाहता है। काव्य नायक का आभास एकमात्र काव्य छद्म है, और यह भी कि समूची रचना मुक्तिबोध के अवचेतन से संबंधित आतंक परक बिंबों का विश्रृंखल संग्रंथन है। रचना की सार्थकता उसके समग्र प्रभाव के प्रक्षेपण में है, कवि के ही माध्यम से सही किंतु पाठक तक मध्य वर्ग के आदमी की बेवसी और त्रासदी प्रेषित अवश्य होती है, और संभवतः यही इस रचना का मकसद भी है। मुक्तिबोध जीवन भर जिन विसंगतियों का शिकार रहे थे और जिस प्रकार उनसे जूझने का बार बार संकल्प करने के बावजूद हर बार पलायित होने की नीयत से ग्रस्त थे, उसी का प्रतिफलन है यह कविता। मुक्तिबोध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में यदि जानकारी प्राप्त की जाए तो समूचे तिलस्मी वातावरण का भी भेद खुल जाएगा। जिन एकांत भयावह अंधकारपूर्ण गुहाओं, बावड़ियों, सीढ़ियों दार पुराने मकानों के बिंब वे बार बार अपनी कविता में पृष्ठ संख्या 38 लाते हैं, उनसे उन्हें अपने निजी जीवन में भी लगाव था, और उनका बहुत सा हिस्सा उन्हें अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासों से भी मिला था, जिन्हें पढ़ने का उन्हें शौक था। इस प्रकार की व्यक्तिगत रुचियाँ प्रत्येक रचनाकार से जुड़ी होती हैं, और महज इनके नाते मुक्तिबोध को छोटा नहीं माना जा सकता। पर जब हम निराला और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना राम की शक्ति पूजा की समक्षता में मुक्तिबोध और उनकी चर्चित रचना अंधेरे में को रखते हैं, तो इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखना ही होगा। निराला अपने बारे में सर्वाधिक तटस्थ कवि माने जाते हैं, क्या ऐसा हम मुक्तिबोध के विषय में कह सकते हैं? अतः अंधेरे में का आंकलन आत्मपरक एकालापी कविता के रूप में करना अधिक सुसंगत होगा, जिसकी अपनी अलग अस्मिता और निजता है।